ओम शांति। इटली के एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व माइकलएंजेलो, उसके विषय में एक बहुत सुंदर कहानी है कि एक बार वो एक दुकान पर जाता है अपने मित्र के, तो अपने मित्र से कहता है, ये जो सामने इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है इसकी क्या कीमत है? तो मित्र कहता है, इसकी कीमत, यह 10 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ है और हमारे लिए बाधा है, कोई आकर इसको उठा के ले जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो वो कहता है, ये पत्थर मुझे चाहिए, माइकलएंजेलो कहता है, और वो पत्थर वो लेकर जाता है। 3 साल के बाद वो उस मित्र को अपने घर बुलाता है, तो एक बहुत ही सुंदर कलाकृति वहां पर रहती है। वो एक चित्र बनाता है मदर मेरी का, और जिसके गोदी में जीसस क्राइस्ट लहूलुहान, जैसे कि अभी अभी उस सूली से निकाला गया है, और ये जो चित्र है बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, पाएटा इस चित्र का नाम है। तो वो उसका मित्र कहता है, तुमने ये कैसे कर दिया, इस पत्थर से तुमने ये चित्र कैसे बना दिया, ये मूर्ति कैसे बना दी? तो वो कहता है, जब मैंने इस पत्थर को देखा था तो मैंने जीसस क्राइस्ट की आवाज सुनी थी। जीसस मुझे कह रहा था कि माइकलएंजेलो, माइकलएंजेलो, मुझे इस पत्थर से मुक्त करो, मैं इस पत्थर में छिपा हुआ हूं, ये जो अनावश्यक जो पत्थर रखा हुआ है उसको हटा दो। तो वो माइकलएंजेलो कहता है, मैंने बस इतना ही काम किया, जो जो अनावश्यक था इस पत्थर से वो सारा हटा दिया, और वो जो चित्र था वो वर्ल्ड फेमस, वो जो मूर्ति थी वर्ल्ड फेमस मूर्ति थी। माइकलएंजेलो एक बहुत बड़ा चित्रकार था, कलाकार था, मूर्तिकार था और शिल्पकार था, अर्थात एक आर्किटेक्ट। तो आज हमारी सभा में भी ऐसी एक बाबा की अनन्य विभूति, बाबा का एक अनन्य बच्चा हमारी सभा में आया है। आज हमारे बीच में सोनल बहन जी है, आप सब इनको शायद जानते ही होंगे, हमारा भी बहुत अधिक परिचय तो नहीं है, परंतु चेहरे से और वैसे मुलाकात होती रहती है इसलिए हम उनको जानते हैं। सोनल बहन जी के विषय में बहुत अधिक तो हमें पता नहीं है, परंतु जब डॉक्टर अशोक मेहता सर ज्ञान में आए थे 1990 में, हमें लगता है तभी से आप भी ज्ञान में हैं, तो लगभग पिछले 28 साल से बाबा के साथ चल रहे हैं, और जितना हम जानते हैं इनकी ज्ञान योग में बहुत रुचि है, ज्ञान की क्लासेस सुनना, उनके ऊपर चर्चा करना, और विशेष जो हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था तो एज आर्किटेक्ट सोनल बहन जी ने ही सारा कुछ जो प्लानिंग किया था, जो कुछ निर्माण किया था, इन्हीं के द्वारा हुआ है, और नीचे जो ग्लोबल हॉस्पिटल, ट्रॉमा का हॉस्पिटल, ट्रॉमा हॉस्पिटल है, उसको भी इन्होंने ही बनाया है, और वर्तमान समय मुंबई में रहते हैं, और शायद भुज में जब जो अर्थक्वेक हुआ था, और वो कौन सा गांव, लखाड़िया, वहां पर भी जो अस्पताल का, कोई एक अस्पताल का निर्माण कार्य था, वो भी बाबा ने सोनल बहन जी को ही निमित्त बनाया था। तो आज ऐसे स्पिरिचुअल आर्किटेक्ट जो है हमारे बीच में है, फिजिकल आर्किटेक्ट तो है ही, स्पिरिचुअल आर्किटेक्ट भी है, आज वो हमारे बीच में अपने जीवन की संपूर्ण यात्रा जो है, आध्यात्मिक यात्रा, जो एक रूहानी सफर है, जिसको हम कहेंगे माय स्पिरिचुअल सफारी, ऐसी ये जो सफारी है, यात्रा है, वो उन्होंने कैसे पार की, जब वो ज्ञान में आए तब उनके क्या क्या अनुभव थे, कैसे बाबा ने उनको मदद की, और वर्तमान समय उनका क्या पुरुषार्थ चल रहा है, ये जो पूरी यात्रा है इसमें उन्होंने अब तक अपने जीवन में आंतरिक क्या क्या प्रगति की और आगे उनका क्या क्या लक्ष्य है, वो सारी बातें आज वो हमको विस्तार से सुनाएंगे। तो सोनल बहन जी, ओम शांति।
ओम शांति सचिन भाई, ओम शांति। सचिन भाई ने मेरा थोड़ा तो परिचय दे ही दिया है, और जैसे सचिन भाई ने बताया, हम एक्चुअली 1989 में मैं पहली बार ही मधुबन आई, और वो आना भी ऐसे हुआ कि जो मेरे पिताजी है डॉक्टर अशोक मेहता, वो कैंसर सर्जन है, तो उसी समय दादी की सर्जरी हुई थी, दादी गुलजार की, बॉम्बे में। और इस प्रकार से हम पहले पहले ब्रह्मा कुमारी इसके परिचय में आए। तो सर्जरी के बाद जब दादी गुलजार वापस सेंटर पर गए थे, तो दादी ने निमंत्रण दिया और मम्मी पापा भोजन के लिए गए थे दादी के साथ, और तभी दादी ने कहा कि आपने हमारी इतनी सेवा की है हॉस्पिटल में, और आप काफी व्यस्त रहते हैं हॉस्पिटलों में, तो थोड़े दिन आप आ जाइए माउंट आबू में, तो वहां हेडक्वार्टर्स में आप रिलैक्स भी कर सकेंगे और हम आपकी सेवा भी करेंगे। तो ये विचार मम्मी को भी अच्छा लगा, क्योंकि वैसे हम लौकिक जैन परिवार से हैं और यहाँ के दिलवाड़ा टेम्पल तो बहुत फेमस है। तो मम्मी ने सोचा कि हम आएंगे, मधुबन भी देखेंगे, दिलवाड़ा की भी यात्रा करेंगे। और उसी समय मैं फाइनली आर्किटेक्चर में थी, तो ये सोचा कि मेरी एग्जाम्स फिनिश हो जाएगी तो मई मास में हम मधुबन आएंगे। तो ऐसे प्रोग्राम बना और हम मधुबन पहुंच भी गए। और मधुबन जैसे आते हैं तो पहली बार आपको पता है सब कितने प्रभावित हो जाते हैं। उस समय तो मधुबन बहुत छोटा था, सिर्फ मधुबन था और कोई हमारे कॉम्प्लेक्स नहीं बने थे उस समय, मधुबन और ओम शांति भवन थे। तो हमें सारा कुछ दिखाया और ये सब देखा, तो पिताजी तो डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर अपने हिसाब से ही सोचेगा। उन्होंने कहा कि ये आपकी डिस्पेंसरी तो बहुत अच्छी है, मगर यदि कोई और बीमार पड़े तो आप क्या करोगे? तो कहा कि उनको तो पालनपुर या अहमदाबाद ही ले जाना पड़ता है। और कोइंसिडेंटली क्या हुआ, उसी समय कोई सेवाधारी की बहुत बीमार हो गए और पापा को बुलाया देखने के लिए और इमीडिएटली शिफ्ट किया, मगर नीचे जाते तक ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो फिर पापा ने निर्भय भाई से बात की कि आप क्यों नहीं कोई छोटी यहां हॉस्पिटल बना दे जो सेवा भी हो जाएगी, क्योंकि जब देखा कि ब्रह्मा कुमारी इसकी इतनी ब्यूटीफुल सेवा है, निस्वार्थ सेवा है, तो ये भी एक सेवा हो जाएगी। और क्योंकि यहां हेडक्वार्टर्स में इतने लोग आते हैं, टूरिस्ट भी माउंट में बहुत आते हैं, तो वो एक अच्छी सेवा हो जाएगी। तो निर्भय भाई ने उस समय कहा कि हाँ, आइडिया तो अच्छा है, मगर हम लोग मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं जानते, हॉस्पिटल के बारे में हम तो मेडिटेशन जानते हैं, यदि आप हेल्प करेंगे तो हम ये प्रोजेक्ट के बारे में जरूर सोच सकते हैं। तो ऐसी बातें चल रही थी और फिर निर्भय भाई ने मुझे कहा कि अच्छा, आप तो आर्किटेक्ट हो तो हमारी हॉस्पिटल का डिजाइन आप करिएगा। तो मैंने सोचा ये तो जैसे बातें होती है ना, अभी मैं तो अभी ही एग्जाम देकर के आई थी। तो बस ऐसे बातें चली और हम 3-4 दिन मधुबन रहे और वापस बॉम्बे लौट गए। मगर ड्रामा में ऐसा नून था कि 2-4 मास में कुछ एक्चुअली हॉस्पिटल के बारे में आगे सोच चली और निर्भय भाई ने कहा कि हम ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो फिर मुझे कहा, अच्छा तो आप नक्शा बनाइए। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं बना सकती, मैं अभी तो बहुत छोटी हूं, अभी अभी एग्जाम दी है, कुछ अनुभव नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, एक कुमारी 100 ब्राह्मण बराबर। फिर मैंने पापा को समझाने की ट्राई की कि देखिए, ये तो अभी मुझे कोई अनुभव नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूं। तो उन्होंने तो और भी मुझे डांटा कि आपको तो काम ही नहीं करना है। तो अभी दोनों तरफ से कोई एस्केप रूट नहीं रहा मेरे पास। तो मैं उन दिनों तो भगवान को ही जानती थी, अभी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, ज्ञान का इतना पता नहीं था। जब भी हम आए थे तभी शिलूबेन रामनाथ भाई ने क्लासेस कराए थे, कोर्स कराया था, मगर उस समय मेरा इतना वो जैसे ज्ञान अट्रैक्ट नहीं हुआ। फिर ये जैसे काम शुरू हुआ तो बॉम्बे में हॉस्पिटल्स में तो आना जाना रहता ही था मेरा, और पापा के कारण से भी हॉस्पिटल्स के साथ बहुत अच्छा परिचय था। तो मैं हॉस्पिटल्स में जाती थी, सब स्टडी करती थी, डॉक्टर्स के साथ बात करती थी, मगर टेंशन तो बहुत था कि अभी उन्होंने प्रोजेक्ट तो दी थी या मगर मैं करूं कैसे। और उन दिनों में मुंबई और आबू के बीच में कनेक्टिविटी भी नहीं थी। आपको बात करनी है तो आपको वो ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता है, और वो भी कभी सुनाई पड़ेगा नहीं सुनाई पड़ेगा। तो इसलिए मैं हर महीने में 7 दिन आकर मधुबन में ठहरती थी ये काम करने के लिए। और उन दिनों मधुबन अभी भी तो बहुत ब्यूटीफुल है, मगर उन दिनों तो और कुछ ही रौनक थी, क्योंकि आंगन में 5-6 दादियां बैठी रहती थी और इतना जैसे सेलिब्रेशन रहता था, दादियों से प्यार रहता था। तो ऐसे मैं आती गई और मधुबन मेरे लिए घर बन गया, और ब्राह्मण सब मेरा जैसे बहुत बहुत परिवार बन गया। दादियों से इतनी प्यार और पालना, तो बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम था वह। पर अभी भी मुझे जैसे इतना ज्ञान नहीं था, सिर्फ मुझे मधुबन बहुत अच्छा लगता था, दादियां अच्छी लगती थी। तो ऐसे काम चला, और ये कुछ अगस्त सितंबर का मास रहा होगा, और फिर अक्टूबर आ गया, बाबा के मिलन की सीजन आ गई। और एक बारी मैं यहां आई थी, तभी बाबा मिलन उन्हीं दिनों में था, तो मुझे कहा चलो आप भी आ जाओ, ओम शांति भवन में बाबा आ रहे हैं। तो मैं भी आकर के बैठ गई। मुरली फिनिश होने के बाद मुझे कहा चलो आपको स्टेज पे बाबा बुला रहा है, आपको बाबा से मिलना है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं आ सकती, इतने सारे बड़े संगठन में मैं कैसे स्टेज पर जाऊंगी ना, नए नए होते हैं, अभी तो कुछ ज्ञान का पता नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती। तो मुझे कहा नहीं नहीं, आपको जाना ही है। ऐसे करके मुझे स्टेज पे ले गए। तो मैं वहां गई तो जैसे एक तो धड़कन इतनी तेज, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ पता नहीं, और इतना बड़ा संगठन, उन दिनों में वो 2500-3000 का भी बड़ा संगठन था। तो मैं इतना टेंशन में वहां गई, और जैसे बाबा के सामने गई स्टेज पर, तो ये जब जो भी मन में चल रहा था जैसे सब शांत हो गया। एक बहुत पावरफुल मैग्नेटिक वाइब्रेशन था, और अभी भी मैं बाबा को नहीं पहचानती थी, मेरे लिए तो दादी गुलजार वहां बैठी है, मगर ये भी सब संकल्प स्टॉप हो गए। और बहुत प्यार और शक्ति का वाइब्रेशन बाबा के चेहरे से आ रहा है, और बाबा ने कहा आप पेंसिल उठाओ, बाप काम करेगा। मैं फिर भी उस समय इतना क्लियर नहीं समझी, और मेरा कार्य चलता रहा, मगर मुझे ये अनुभव रहा कि जो मैं ड्राइंग्स कर रही थी, वो उन दिनों में कंप्यूटर तो नहीं थे, तो बड़े बड़े ट्रेसिंग पेपर्स रहते थे, और मैं अकेली, मेरे पास कोई सहायक नहीं, क्योंकि मैं ही असिस्टेंट जैसी थी उन दिनों में। तो मैं ड्राइंग्स करती थी, तो मुझे ये संकल्प आता था या फीलिंग आती थी कि ये मैं नहीं कर रही हूं, कोई शक्ति मेरे से काम करा रही है, क्योंकि इतना बड़ा ड्राइंग पेपर और इतने छोटे समय में सब करना है, तो ये होते जा रहा है, तो जैसे कोई शक्ति मेरे थ्रू काम कर रही है। मगर फिर भी अभी पता नहीं चल रहा था कि ये शिव बाबा ब्रह्मा बाबा कैसे शक्तियां काम कर रही है। तो ऐसे बाबा से मिलने होते रहा, फिर धीरे धीरे ज्ञान भी आता गया, क्योंकि यहां ही वो वातावरण में रहते हैं, भाई बहनों के साथ रहते हैं। एक बार वापस बाबा को मिलना हुआ तो बाबा ने कहा कि आप बहुत लकी हो। और फिर मैं सोचने लगी, ये तो बाद में सब ख्याल आया कि देखो भक्ति मार्ग में हम भगवान को याद करते हैं, यहां भगवान हम बच्चों के सामने आकर हमें कितना वरदानों से भर देते हैं। तो ये कार्य चला, और बाबा ने उस समय बहुत अच्छे साथी भी दे दिए। बुरा ब्राह्मण परिवार का संगठन तो था ही, मगर उस समय और अभी भी है, हमारे एक बीके इंजीनियर है छाया भाई करके, तो छाया भाई ओम शांति भवन के समय भी निमित्त थे, और निर्वैर भाई ने उनको हॉस्पिटल के लिए भी निमित्त बनाया था, तो वो इंजीनियर है और मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। मैं नक्शे बनाती थी, छाया भाई को एक्सप्लेन करे, छाया भाई साइट पे उसको उसका मकान बनवाते थे। और मैं थी 23 ईयर्स की, और छाया भाई होंगे एग्जैक्टली मेरे से दुगने उम्र के। फिर भी मैंने देखा कि छाया भाई इतने सिंपल, इतने निर्माण थे, मैं इतनी छोटी, अनुभव कुछ भी नहीं, مگر وہ ہر چیز میرے ساتھ ڈسکس کر کے، ایسے کبھی نہیں کہتے تھے کہ یہ نہیں ٹھیک ہے ایسے کرو، وہ ہم لوگ ڈسکس کرتے تھے ایسے کرے ایسے کرے، تو میں بھی کافی ٹچ ہو گئی کہ دیکھیے اتنے سینئر ہے پھر بھی وہ اتنا سمپلی ساتھ میں ڈیل کر رہے ہیں۔ تو تبھی سے میرے پر بھی برہما کماری اس کا بہت اچھا پربھاؤ پڑا کہ دیکھو گیان سے ہم کیا سے کیا بن سکتے ہیں۔ اور اسی سمے میری لوکک میں سگائی بھی اسی سمے ہوئی تھی اور ایک سال کے اندر شادی نکی تھی، تو ابھی ہاسپٹل کا بھی یہ کاریہ چل رہا ہے، وہ بھی کاریہ چل رہا تھا، تو مجھے تو سمے ہی نہیں مل رہا تھا، تو بہت ٹینشن کا سمے ہو گیا میرے لیے۔ تو ایک بار دادی گلزار بامبے آئے تھے تو ممی نے دادی کو کہا دادی اس کو کچھ سمجھائیے بہت ٹینشن کرتی ہے، کیونکہ پہلے سے دادیوں کے ساتھ بہت نکٹ کا سمبندھ رہا اور اسپیشلی دادی گلزار کے ساتھ۔ تو پھر دادی نے، دادی کتنی میٹھی طرح سے بات کرتی ہے آپ کو پتا ہے، دادی نے کہا اچھا یہ کاریہ کس کا ہے؟ تو میں نے کہا بابا کا۔ اس سمے تک پھر میں مجھے پہچان ہو گئی تھی تو میں نے کہا بابا کا، تو دادی کہتی ہے تو کاریہ اس کا ہے تو وہی کرائے گا۔ میں نے کہا ہاں یہ تو بات رائٹ ہے، تو پھر آپ ٹینشن نہیں کرو، اس کا کاریہ ہے وہی کرا رہا ہے، آپ صرف اٹینشن رکھو۔ تو وہ بات جس بھاؤ سے دادی نے مجھے کہی آج بھی مجھے اسی طرح کلیئرلی یاد ہے۔ تو پھر ہاسپٹل کا بھی فرسٹ فیز کا بھی انوگریشن ہوا، اسی سال میری شادی بھی ہو گئی، اور بابا نے ابھی یہ دوسرا ساتھی بھیجا جو میرا یوگل ہے چیتن، وہ بھی اتنا اچھا ہے کہ پہلے دن سے اس کا اتنا سہیوگ، اتنا میں آبو آتی جاتی تھی، ہر ماس میں ہفتہ مدھوبن میں رکتی تھی تو اس کا پورا سہیوگ۔ وہ انفیکٹ مجھے آ کے پوچھتا تھا کہ اچھا آپ نے آج کام تو ٹھیک سے کیا نا، کیونکہ کبھی لوکک چیزوں میں بھی بزی ہو جاتے تھے، تو وہ مجھے کہتا نہیں یہ سب چھوڑو ابھی پہلے آپ کا کام کرو، تو بہت سہیوگ۔ اور جیسے میں بھی گیان یوگ سمجھنے لگی اچھی طرح سے تو اس کی بھی جرنی میرے ساتھ، وہ بھی گیان یوگ کو اس کو بھی اچھا لگنے لگا۔ تو جیسے بابا نے اتنی اچھی طرح سے ڈراما پلان بنایا تھا کہ جو بھی ساتھی آیا وہ بھی صحیح ہوگی، تو جیسے مارگ بابا ایزی کرتے گئے۔ اور دادیوں کا یہاں جو دادیوں سے یہاں پایا مدھوبن میں، دادی پرکاشمنی کو دیکھ کر کے، دادی نے کبھی کہا نہیں کہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، مگر جب دادی کو دیکھتے ہیں کہ دادی کیسے کاریہ کر رہی ہے، کیسے ویوہار کر رہی ہے، کیسے پالنا کر رہی ہے، تو جیسے دل میں چھاپ پڑ جاتی ہے۔ اور مجھے اس سمے لگا کہ یدی کسی کے جیسے بننا ہے تو دادی کے جیسے بننا ہے۔ ابھی بھی جیسے گیان کی ارلی سٹیجز تھی تو میں نے کہا اتنی بیوٹیفل پرسنالٹی ہے، ایسے ہمیں گن دھارن کرنے ہیں۔ اور دوسرا میں نے دیکھا کہ ان دنوں میں سمجھو گیان یوگ تو دھیرے دھیرے ہو رہا تھا، مگر یہاں جو مدھوبن کا واتاورن ہے، مدھوبن کا وایو منڈل ہے، وہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ بھلے یہاں رہو کچھ نہیں کرو تو بھی آپ کے اندر وہ اثر چلتی رہتی ہے۔ تو مجھے کافی سالوں کے بعد پتا چلا کہ دیکھو میں نے تو اتنا اس سمے کچھ کیا نہیں تھا، مگر کتنا اندر میں اپنے آپ کو چینج محسوس کرتے ہیں، تو وہ بہت رہا یہاں۔ اور اویک باپ دادا کی بھی پالنا اتنی لی، ان دنوں میں مدھوبن یہاں اوم شانتی بھون میں بابا آتے تھے تو وہاں نیچے سبھی ڈبل فورینرز دادیاں بیٹھتی تھی، تو گوپی بہن اس سمے سیٹنگ کے انچارج تھے، تو مجھے کہتے تھے بھلے آپ بھی چلے جاؤ بیٹھ جاؤ، تو میں بھی دھیرے سے جا کے دادی کے پاس میں بیٹھ جاتی تھی، ایک دم بابا کے سامنے لگتا تھا بابا یہاں ہیں ہم یہاں ہیں، اور وہ ملن کے پل ہی کچھ الگ تھے، لگتا تھا کہ بابا گیا مگر وہاں سے اٹھے ہی نہیں، بابا آپ نہیں جاؤ، تو اتنا میٹھا وہ ملن ہوتا تھا۔ اور پھر سمے آگے بڑھتا گیا اور پھر شانتی ون کا نرمان ہو گیا، تو وہ ہو گیا 1997، تو میں ایک بار ہی نیچے چلی گئی بابا سے ملنے، انیشیل ملن کے ڈیز تھے وہ شانتی ون کے، اور میں اکیلی تھی اس سمے، تو ششی بہن نے مجھے ان کے پاس میں بٹھا دیا کہ بیٹھ جاؤ، انہوں نے سوچا گا چھوٹی ہے اتنے بڑے میں कहाँ घूम जाएगी तो बिठा दो मेरे बाजू में। तो एकदम बाबा के सामने बैठे हुए थे और पूरी मुरली फिनिश हुई। और जब ही बाबा का विदाई का समय आया तो जैसे दादिया निर्वर भाई सब वरिष्ठ भाई ऊपर जाते हैं, निर्वर भाई बाबा से कुछ बात कर रहे थे, फिर वो मुड़े और इशारा किया, हमारी तरफ इशारा कर रहे थे मगर वो पता नहीं चल रहा था इशारा क्या, ऊपर आ जाओ ऐसे। पहली बारी इशारा किया, फिर दूसरी बारी इशारा किया कि ऊपर, मुझे पता नहीं चला कि किसको कह रहे हैं। और हम हमेशा सोचेंगे हमको तो नहीं बुला रहे किसी और को ही बुला रहे। फिर बाबा ने ऐसे इशारा किया, फिर शशिबेन को पता चला, शशिबेन ने कहा जाओ आपको बुला रहे हैं ऊपर। तो मेरी तो एक बार हार्ट बीट बंद हो गई, मैंने कहा बाबा बुला रहा है। फिर मैं ऊपर जल्दी चली गई और बाबा ने इतनी पावरफुल दृष्टि दी, इतनी प्यार भरी पावरफुल दृष्टि। और फिर विदाई का समय था तो मैं भी वहां बैठ गई दादियों के पीछे, तो वो पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही पावरफुल था। और वो पूरी रात जैसे इतनी खुशी कि नींद ही ना आए, पूरी रात मैं जागती रही उसी खुशी में। और उस समय से मैंने देखा कि वो पुरुषार्थ की रफ्तार भी काफी तेज हो गई। तो बाबा जब ये शक्तियां देता है तो इतना असर करती है हमारे ऊपर। तो उस समय फिर पुरुषार्थ और तेज हो गया। तो ऐसे अगेन समय बीता गया। फिर मैं वो बाबा से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता था। और जैसे एक जब भी मैं पहले ज्ञान में आई तो मेरे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट ब्रह्मा बाबा का पिक्चर रखा हुआ था रूम में। और वो मैं पिक्चर देखती थी बाबा का फोटो, तब हमेशा लगता था जैसे बाबा से बातें हो रही है, बाबा की आंखों से कुछ बातें हो रही मेरे साथ, मगर मुझे नहीं पता चल रहा था कि क्या बात हो रही है, मगर कुछ बातें हो रही थी। फिर एक दिन जब बहुत नई थी मैं ज्ञान में, तभी मुझे किसी लौके के साथ बात हो रही होगी। तो दुनिया में तो कहते हैं ना कि भगवान की प्राप्ति के लिए आपको एक साकार गुरु चाहिए, गुरु के बिना नहीं होता है ये। तो उस दिन बहुत जैसे मुझे किसी ने कहा होगा और वो बहुत प्रभाव हुआ मेरे पे। तो मैं ब्रह्मा बाबा के फोटो के सामने जाके बैठी और मैंने कहा बाबा आप तो अव्यक्त हो गए हो, शिव बाबा निराकार है, तो हमारे लिए साकार में कौन है। तो ये बातें बाबा से हो रही थी और ऐसे लगा किसी ने बहुत प्यार से मुझे आके बाहों में ले लिया। और जैसे बाबा ने कहा कि भले मैं आपको दिखाई नहीं पड़ रहा हूं सामने, मगर मैं आप ही के साथ हूं। वो इतना ब्यूटीफुल अनुभव था, क्योंकि उसके बाद कभी ये प्रश्न नहीं आया कि बाबा है, देख रहा है, सुन रहा है, हम अकेले हैं, ये कभी संकल्प नहीं आया, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बाबा ने करवाया। और मैंने ये भी देखा कि हर चीज में छोटी हो या बड़ी हो बाबा एक्सपीरियंसेस करवाते थे, क्योंकि बाबा को पता है कि मेरे बच्चों के लिए यदि ये एक्सपीरियंस मैं नहीं करवाऊंगा तो उनका मेरे में प्यार या निश्चय कैसे बैठेगा, क्योंकि हम तो साकार से यूज टू है ना, साकार सामने होना चाहिए। तो बाबा ने ऐसे बहुत अनुभव करवाए छोटी छोटी बातों में। ऐसे लगता है बाबा आप इतनी छोटी बातों में भी हमारे साथ रहते हो, हमारा इतना ख्याल रखते हो, और बड़ी बातों में तो बाबा था ही। मैंने ये भी देखा कि जभी जो भी बाबा श्रीमत में हमें बताते हैं और उन बातों उन धारणाओं पे चलना है तो लौकिक के हिसाब से कभी मुश्किल लगता है, क्योंकि हमने इतना उसके बारे में सोचा नहीं होता है। और हम ट्राई करते हैं, कभी अपने आप से ही मूंझ जाते हैं, भले बात इतनी बड़ी नहीं है मगर अपने आप से मूंझ जाते हैं। और जब भी लगता है कि बाबा ये बहुत करना है, दिल से लगता है बाबा ये करना है मगर हो नहीं पा रहा है हमसे, और हम बाबा पे छोड़ देते हैं ना कि बाबा अभी आप आओ, अभी आप ही मदद करो। तो मैंने देखा है उस समय बाबा आके हमें टचिंग देते हैं, सोल्यूशन देते हैं। मगर इसमें मैंने दो बातें देखी, एक तो हमारा बहुत प्यार होना चाहिए बाबा से, दिल से, और दिल से इच्छा होनी चाहिए वो चीज करने के लिए, और दूसरा वो बात पूरी जो भी हमें उस समय लग रहा है कि नहीं हो रही है वो बात पूरी बाबा को दे देना है। यदि हम बाबा को देकर फिर हम सोचते रहे उस बारे में तो बाबा कहता है ना तो फिर मैं नहीं कर सकता हूं, यदि आपको मुझे पूरी दे देनी है। तो अभी तक भी वही मैं फॉलो करती हूं कि लगा कि नहीं बस बाबा अभी आप आ जाओ, अब ये मदद करो। और फिर वो बात जब भी फिर वो क्या है वो बात इजीली जाती नहीं है ना माइंड से, तो वो आया करती है। तो उस समय बाबा से हमेशा मैं बातें करती रहती हूँ कि बाबा ये ले लो, ये तो आपको दी है ना, अभी आप मुझे उसका सोल्यूशन देना। तो बाबा हमेशा मददगार है, मगर कर्म अनुसार जो भी सिचुएशंस आते हैं हमारे सामने वो तो हमें फेस करने ही हैं। तो इतने सालों में 30 सालों में कई पेपर्स आते हैं हमारे सामने, मगर हर पेपर में मैंने देखा कि बाबा साथी होकर साथ निभाता है, एकदम बाबा साथ निभाता है यदि हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। तो अभी काफी समय से मुझे ऐसे लग रहा था कि बाबा अभी इतने तो हमने यात्रा तय की आपके साथ, अभी आगे के लिए क्या, क्योंकि दिल से यही हमेशा निकलता है ना, जो बाबा का वो सॉन्ग बना हुआ है वाह बाबा वाह, हमेशा ये निकलता है वाह बाबा वाह। और बाबा के लिए बहुत दिल से शुक्रिया निकलती है, बाबा थैंक यू कि ये कलयुगी दुनिया में भी हमें इतना बचा करके रखा है आपने, तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर जैसे बाबा से बातें करते हैं तो मुझे यही आता है कि बाबा आपने जो पालना दी है, आपने जो प्यार दिया है, आप जो हमारे लिए आए हैं, तो अभी हम ये सब पालना का रिटर्न आपको कैसे थे। तो फिर एक ही जैसे जवाब आता है मेरे पास कि बाबा आपकी हमें प्रत्यक्षता करनी है, ये एक ही हमारा रिटर्न हो सकता है, और क्या हम बाबा को दे सके। और तभी ये भी याद आता है एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि भगवान देख नहीं सकता उनके बच्चों के दुख, तो आप कैसे देख सकते हो। और बाबा का वो जो पूरा भाव था उस समय कि आप में जैसे दिल है या नहीं है कि इतना आपके भाई बहनों का आप दुख देख रहे हो, और वो दुख उनका तभी समाप्त होगा जब आप आपकी संपूर्ण स्टेज को पालो और बाबा की प्रत्यक्षता हो। और बाबा हमें हमेशा पूछते रहता है अच्छे बच्चे सब चीजें तैयार है, अभी आप मुझे डेट बताओ। तो ये बात बहुत माइंड में आती रहती थी कि बाबा हम कैसे करें, और कुछ समय से ज्यादा ही आती रहती है कि अभी समय नहीं है, समय नहीं है। और बाबा ने जैसे ये December 31st की मुरली में बताया कि समाप्ति और बाबा का मैसेज सब तक पहुंचाओ, तो फिर वो बात बहुत जैसे दिल में बैठ गई कि नहीं अभी इस साल में जो भी पुरुषार्थ किया है, समझो 28-30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, तो अभी तक जहां भी पहुंचे हैं, फिर अभी से हमारी जो भी संपन्न स्टेज है, हर एक की अलग अलग रहेगी ड्रामा अनुसार, कि हमारी जो भी संपन्न स्टेज है उसके लिए हमें अभी पुरुषार्थ करना है। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो पूरा साल तो पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, फिर जिस समय एग्जाम के दिन आते हैं तो वो भी जो 1 मास 15 दिन 2 महीना जैसी एग्जाम हो ऐसे हम पढ़ाई में लग जाते हैं दिन रात, फिर वो खेल कूद आदि का कुछ संकल्प नहीं रहता है, बस ये एग्जाम में हमें जो पूरे साल का पुरुषार्थ है तो वो सफल करके पढ़ाई करके सबसे बेस्ट मार्क्स लेने हैं, वही माइंड में रहता है। तो जैसे अभी मुझे लगता था वो यही समय चल रहा है कि अभी तक का जो पुरुषार्थ किया अभी वो फाइनल एग्जाम के दिन आ रहे हैं, तो हमें पूरा पढ़ाई में लग जाना है, अपनी स्टेज बना लेनी है हमें। तो इसी संकल्प को लेकर मैं इस बारे भी मधुबन आई कि मधुबन में जाकर के 1 हफ्ता रहूंगी, यहां तपस्या करते हैं, और उस समय यहां जो बाबा की टचिंग आती है कि हमें किस तरह से पुरुषार्थ करना है। ऐसे तो हम सब कर ही रहे हैं मगर हर समय के लिए कुछ स्पेशल होता है। तो जब ये एकांत में रहते हैं, और पहले भी मैंने मधुबन में शांतिवन में भट्टियां की है, जैसे यज्ञ हमारा हर साल भट्टियां ऑर्गेनाइज करता है, तो वो तो बट ठीक ही है, मगर मैं अपने आप से मधुबन में काफी चांस मिलता है आ जाने का और अपनी पर्सनल भट्टी कर लेती हूँ, थोड़े दिन मौन भी कर लेती हूँ और जैसे पूरी अपने से भट्टी, क्योंकि क्लासेस तो हमारे पास रहते ही है, तो वो पढ़ना, योग करना, यहाँ के वायुमंडल में रहकर वो भट्टी मेरी हमेशा चलती रहती है। तो इस बार भी मैं ही इसी के लिए आई हूँ कि बाबा के साथ एकदम एकांत में कनेक्शन में कौन सा पुरुषार्थ हमारे लिए है अभी, उनसे डायरेक्शन लेके उसी अनुसार चलना है। कुछ हफ्तों पहले रिवाइज मुरली संडे की आई थी, उसमें ज्वाला स्वरूप योग के ऊपर काफी विस्तार था, तो मुझे लगा मेरे लिए वो एक पुरुषार्थ तो अभी के लिए बहुत अच्छा है, वो ज्वाला स्वरूप योग का, क्योंकि हमारे जो भी हिसाब किताब, जो भी विक्रम, जो भी बाकी है, जो भी चेंजेस हमें अपने में लाने हैं, वो शायद वो स्टेज से हमसे अच्छा हो सकेगा। तो अभी का पुरुषार्थ यही है कि बाबा बनना ही है, करना ही है। बाबा कहते हैं ना, आप ही विजय ही थे, आप ही हो और आप ही बनोगे। बाबा कहता है आप ब्राह्मण नहीं बनोगे तो और कौन बनेगा। तो मुझे भी ये एब्सोल्यूट निश्चय और नशा है कि हम ही थे और हमें ही बनना है, और अभी ही समय है और अभी बन ही जाएंगे। जो वो थोड़ा पुरुषार्थ कर लेंगे, जब भी बाबा कोई डायरेक्शन देता है हमें और हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं, तो बाबा इतना एक्स्ट्रा पावर भी दे देता है। तो बाबा कभी कभी कहता है ना कि एक एक कदम हिम्मत का आपका और हजार कदम बाप के, तो वो तो बंधा हुआ ही है हमारे साथ। यदि हम वो हिम्मत रख लेंगे तो ये वो करा ही लेगा ये भी कार्य। तो अभी वो विजय का निश्चय हम सब ले ले, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि संगठन में जब वो आप संकल्प करते हो तो वो संकल्प में भी पावर बढ़ जाता है और एक दूसरों को भी उसकी मदद मिलती है। तो मैं समझती हूँ ये अभी इसी टाइम है हम सबके लिए अपना फाइनल पुरुषार्थ करने के लिए, और हम अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। हाँ अच्छा। अभी क्या है कि जो मेरे माता पिता है वो पहले से बहुत आध्यात्मिक रुचि के हैं, तो उन्होंने जैनिज्म की भी स्टडी की और रजनीश ओशो में भी बहुत गए, बहुत साधु संन्यासी हमारे घर पे भी आते थे, तो उन्होंने बहुत स्टडी की और वो बहुत ओपन माइंडेड थे। ऐसा नहीं था उनका कि ये सिर्फ जैन का देखना है, तो पहले से घर में वातावरण भी बहुत अच्छा बना रहा था। पापा तो दिन भर हॉस्पिटल में रहते थे, मगर मम्मी जो भी अच्छा पढ़ती थी, सुनती थी, हमेशा मेरे साथ शेयर करती थी, तो वो हमेशा बैकग्राउंड मेरा रहा ही है। और घर का वाइब्रेशन भी बहुत शांतिपूर्वक, परिवार में भी बहुत प्यार था। और मैं वो जैन मंदिर में भी जाती थी, तो छोटी थी तभी यही संकल्प आता था, मैं मम्मी को कहती थी कि ये पुजारी कितने लकी है, उनको तो हर समय भगवान के साथ रहने मिलता है, हमें तो हर समय भगवान के साथ रहने नहीं मिलता है। तो जैसे भगवान से बहुत प्यार था, मगर वो जो रिचुअलिस्टिक कहते हैं पूजा पाठ वाला प्यार नहीं था, वो एक अंदर से प्यार था। मुझे वो जाके अगरबत्ती जलाओ, फूल चढ़ाओ, ये सब में इंटरेस्ट नहीं था। वहां जाके बैठो भगवान के सामने, जो मूर्ति को भगवान समझते थे उस समय, और जस्ट बहुत सुख आनंद उससे मिलता था। तो मेरे लिए इतना मुश्किल था ही नहीं। और दूसरी बात, मुझे कभी कभी लगता है कि ये आगे के कुछ आगे से की हुई है ये सब भक्ति, ऑब्वियसली तभी तो इस जन्म में तो भक्ति नहीं की ना बराबर। और ज्ञान मुझे बहुत इजीली, पहले क्या हुआ, ज्ञान से पहले मुझे ब्राह्मण परिवार का प्यार और दादियों को प्यार ने बहुत आकर्षण किया, और मधुबन, अव्यक्त बाप दादा, ये सब पहले हुआ और ज्ञान धीरे धीरे बाद में आया। तो मेरे लिए नहीं, फिर जैनिज्म के जो बेसिक सिद्धांत है वो ब्रह्मा कुमारी से बहुत मिलते हैं, क्योंकि जिन माना जैन आता है वो वर्ड से, जिन से, वो है कर्मेंद्रिय जीत, कर्मेंद्रियों पर जीत करने वाले वो जिन होते हैं, इससे नाम आया जैन। तो बाबा भी तो यहां कर्मेंद्रिय जीत की बात करता है, और वहां भी आत्मा का बहुत है। हम जिस जैन संप्रदाय से आते हैं ना, उसमें वो पूजा पाठ वाला जैन नहीं है, वो ज्ञान मार्ग वाला जैन है। पता नहीं, वो तो अभी मुझे इतनी डिटेल मगर वो जो वो उनके उपास्य बोलते हैं, जिसमें मूर्ति नहीं रहती है, वो अलग संप्रदाय रहता है। श्वेतांबर में भी दो रहते हैं, एक मूर्ति पूजक और एक ये उपास्य में जाते हैं। हाँ तो फिर मुझे पहले से ये नहीं था, और बाबा के ज्ञान में आने से जो भी जैनों की बात थी वो ज्यादा क्लियर हो गई। क्योंकि जैन में ऐसे कहते हैं कि ये 24 तीर्थंकर जो है वो होके गए, अभी अगले 24 हो रहे हैं, और उन्होंने एक क्षेत्र बता दिया कि महाविदायक क्षेत्र में ये अभी विचरते हैं, माना है वहां पर, वो क्षेत्र बना दिया। तो और फिर कहते हैं कि जो पहला तीर्थंकर या पता नहीं तीर्थंकरों में अगले तीर्थंकरों में एक श्री कृष्ण है। तो मैं मम्मी को उस समय पूछती थी कि जैन हमेशा समझते हैं कि हम हिंदुओं से ऊपर है क्योंकि हम आत्मा में मानते हैं, और ये हिंदू देवी देवताओं में मानते हैं, तो वो समझते थे, हर धर्म वाला समझता है कि उनका धर्म ही श्रेष्ठ है ना, तो ऐसे भी जैन समझते हैं। तो फिर मैंने कहा कि जब हम देवी देवताओं में नहीं मानते हैं इतना, तो फिर श्री कृष्ण कैसे आ गए तीर्थंकरों में? तो वो जवाब तो क्लियरली मैं ज्ञान में आने से मुझे मिल गया कि क्यों, वही है ना जो अभी बन रहे हैं, उन्होंने वो क्षेत्र दिखा दिया, बट हम बन रहे हैं यहां। और आप देखेंगे ना तो जैन की जो जैन तीर्थंकरों की मूर्ति रहती है, उनके यहां थर्ड आई पे ज्योतिबिंदु का स्वरूप रहता है, आत्मा का। और हम बाबा भी कहते हैं बाबा ज्योति स्वरूप, और वो खुली आंख रख के बैठे हैं आप देखेंगे तो। तो बाबा यहां कहते हैं आपको ओपन आई मेडिटेशन करना है, तो बहुत सारी। और फिर जो बाबा दिलवारे के बारे में बताते हैं, काले से गोरा, ये सब ऊपर स्वर्ग बना हुआ है और आप यहां तपस्या में बैठे हो, वो सब एकदम मैच हो गया। तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। हाँ, बिगिनिंग में क्या है, जो सब हमारे आसपास वाले कहते हैं, कईयों ने मुझे तो नहीं कहा मगर मम्मी पापा को कहा कि आप उसको इतना भेजते हैं आबू, ये तो ब्रह्मा कुमारी हो जाएगी, जैन से चली जाएगी, ऐसे सबके विचार रहते हैं ना। तो मगर मुझे ऐसी कोई बाधा नहीं आई, और मुझे लगता है जैसे ये पूरा जीवन मेरा है, जो बचपन से लेके अभी तक, जैसे बाबा की छत्र छाया के अंदर है। क्योंकि जो भी बातें आती है, बड़ी छोटी जो भी, उस वो पार हो जाती है बाबा की हेल्प से। और अभी यदि मैं कहूं कि मेरा जिंदगी का फोटोग्राफ मेरे सामने है, तो मुझे सिर्फ सुख और प्यार दिखाई देता है, और कई बातें हैं मगर वो इतनी दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है पालना और प्यार, वो बहुत मिला है। लौकिक में भी बहुत मिला था, स्कूल में भी मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, तो पहले से सबका, टीचरों का भी बहुत प्यार रहता था, परिवार का तो प्यार था ही, फिर यहां आई तो ब्राह्मण परिवार का इतना प्यार, तो मुझे लग रहा है बाबा का इतना प्यार, तो जैसे प्यार में ही पले हैं, और अभी भी इतनी पावरफुल छत्र छाया के अंदर है। जैसे पहले से हम बड़े हुए हैं घर में, पापा कैंसर सर्जन थे, मगर वो आध्यात्मिक, मेरी इच्छा नहीं थी मैं डॉक्टर बनूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी था और मैं बहुत अच्छी थी उसमें, और मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा था, हाथ बहुत अच्छा था, तो पापा ने कहा कि अच्छा आप प्लास्टिक सर्जन बनो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो खून भी नहीं देख सकती और मैं तो इंजेक्शन भी नहीं देख सकती, मैं डॉक्टर कैसे बनने वाली हूं। फिर भी पापा को था नहीं नहीं हाथ बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने क्या किया कि 12th स्टैंडर्ड में मैंने बायोलॉजी की पढ़ाई ही नहीं की, मैंने कहा मैं पढ़ूंगी तो मुझे एकदम इतने टॉप मार्क्स आएंगे, फिर पापा छोड़ेंगे नहीं। तो लास्ट वीक में मेरे फिजिक्स ने प्रोफेसर को लगा कि मैं नहीं कर रही हूं बायो की पढ़ाई, तो मुझे पूछा आपने पढ़ाई की है, मैंने कहा नहीं बुक्स ही नहीं है, तो मुझे कहा कि आप फेल हो जाओगे बायोलॉजी में, तो इतना धक्का लगा कि मैं जाके पढ़ाई शुरू की, और फिर मार्क्स इतने अच्छे आए कि मुझे बॉम्बे में बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रही थी, तो पापा ने बहुत कहा आप जाओ जाओ, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकती। तो पापा थोड़े दिल शिकस्त हो गए उस समय कि आपकी सब टैलेंट वेस्ट कर दी, आप डॉक्टर नहीं बने। उनके लिए डॉक्टर है ना सबसे महान चीज होती है। तो उनको बहुत लगा। फिर जब ही मैं यहां आई और ये हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट हुआ तो उनको थोड़ी शांति हुई। हाँ अब भी आप कुछ अच्छा कर रहे हो, डॉक्टर्स के लिए कर रहे हो ना, तो कुछ सफल है जीवन। ऐसे हुआ। और ये जैसे आपने पूछा कि प्रोफेशन में और स्पिरिचुअलिटी में, पहले से मैंने बताया कि पापा बहुत आध्यात्मिक भावते थे, उनको सेवा का बहुत था, इसलिए मैंने कभी परिवार में पैसे की बात ही नहीं सुनी है। तो मुझे पैसा कितना होता है क्या होता है उसके बारे में कभी पता ही नहीं था। और पहले पहले आई तो बाबा का सेवा का यहां हॉस्पिटल का हो गया, तो वहां भी तो पैसे के सवाल ही नहीं है, सिर्फ सेवा का सवाल है। और जब ये सेवा करते हैं तो पहले ये जैसे हम बिजनेस में प्रोफेशन में जाते हैं तो दो चीजें होती है ना, एक तो नाम कमाना और पैसे कमाना। तो मेरे लिए ये दोनों चीजें नहीं थी, क्योंकि पापा पहले से उनका फीस लेने का तरीका बहुत अलग से है, लेते हैं नहीं लेते हैं। आधे जो बहुत समझो अमीर है वो पापा के पास आते हैं तो गरीबी होकर आते हैं, तो पापा फीस नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही चलता आया है पहले से। तो फिर मेरे में भी इतना थॉट नहीं था कि यू नो पैसा बनाना है, वो कभी था ही नहीं, क्योंकि सब जैसे जो चाहिए वो जीवन में तो मिल रहा था, फिर इतनी आवश्यकता नहीं थी कि आप कमाओ। और ऐसे वो लालसा नहीं थी कि ज्यादा पैसा कमाना है या नाम कमाना है, वो मुझे नाम का भी नहीं था, क्योंकि मैं बहुत खुश थी अपने आप में। जैसे ये बाबा की सेवा शुरू की तो इसमें भी खुश, और उसमें तो ये रहता ना थैंक यू बाबा, क्योंकि मुझे पता था, मुझे एक्सपीरियंस था कि ये मैं नहीं कर रही हूं, बाबा करा रहा है। तो करण करावन हार करा रहा है, हम कर रहे हैं, तो उसमें नाम का भी सवाल नहीं आया। तो ये दोनों चीज नहीं थी, इसलिए मेरे लिए बहुत सरल हो गया। और पहले से जैसे बाबा का हाथ पकड़ लिया तो मुझे यही संकल्प था कि मुझे जो भी काम करना है वो इसी मात्रा में करना है कि मुझे ज्ञान योग के लिए समय मिले और आबू आने का समय मिले। क्योंकि उस समय तक तो आदत हो गई थी ना, 8-10 साल हर मास आप एक हफ्ता आबू में रहो। ये अभी ऐसे नहीं लगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दोनों तरफ मेरे लिए इतना अच्छा था, यहां भी आती थी तो अच्छा था, वहां भी जाती थी तो अच्छा था, इसलिए वो इतना पावरफुल संकल्प नहीं होगा शायद, क्योंकि इतना याद नहीं आ रहा है। मगर थोड़े मास में मैं नहीं आती थी ना, तो वो जैसे आप डॉक्टर्स कहते हैं ना विद्रॉल सिम्टम्स होते हैं, चलो अभी मधुबन चले जाए थोड़े दिन के लिए। तो यहां आते हैं तो वो, और बाबा हमेशा फिर मुरलियों में भी कहता है कि बादल आते हैं यहां भर के जाते हैं, आपको वहां बरसना है। तो वो सब आई थिंक बातें माइंड में रहती थी, इसलिए यहां भी आकर एंजॉय कर, यहां तो ज्यादा ही एंजॉयमेंट है वो पुरानी दुनिया से। मगर उन दोनों में ये पुरानी दुनिया इतनी भी नहीं खराब थी जैसे अभी हो गई है। अभी वातावरण कुछ, अभी यहां का तो फिर भी सेफ है, मगर शहरों का वातावरण, दुनिया का वातावरण काफी बदल गया है, जब भी हम 20-30 साल के पहले देखते हैं और अभी देखते हैं तो वो फर्क है। मगर हमेशा ये बाबा की श्रीमत की बातें रहती है ना, तो फिर और इतनी सोच नहीं चलती है कि हम यहां आ जाए। वो ड्रामा और बाबा पे बहुत निश्चय है, इसलिए यही लगता है बाबा जो कराएगा जिस समय वो एक्यूरेटी होगा, इसलिए वो इतना फिर संकल्प चलता ही नहीं कि ऐसे होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए। और आता भी है संकल्प कोई बात के लिए तो फिर बाबा को दे देते हैं, क्योंकि ड्रामा तो निश्चित है, ड्रामा की नूंद तो निश्चित है, तो फिर हम बदल तो नहीं सकते उसको, तो फ्लो विद द टाइड। वो तो हिंदी में बोल रहे थे, मुझे लगा ये तो पूरा हिंदी में था। अभी वो सबसे बड़ा विघ्न तो मैं नहीं कहूंगी, मगर एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जैसे 2010 में पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई, ऐसे तो मलेरिया के लिए ही एडमिटेड थे हॉस्पिटल में, और मैं उनके साथ रुकी हुई थी हॉस्पिटल में, मलेरिया था। तो वो मैं दिन रात 24 घंटा हॉस्पिटल में रहती थी उनके साथ। और हॉस्पिटल एक्चुअली बीएससीएस अपने जो बॉम्बे का हॉस्पिटल है वो तो मेरे लिए घर ही बन गया है, क्योंकि वहां भी सेवाएं देती हूं, आना जाना रहता ही है, अपने भाई बहन रहते हैं, तो जैसे वो भी मेरे लिए एक एक्सटेंडेड घर ही है। और सडनली एक दिन मॉर्निंग में मैं पापा के पास थी तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, उन्होंने फोन से इंटेंसिव केयर में फोन कर लिया, डॉक्टर जैन को बुला लिया। मुझे बिफोर आई न्यू तो डॉक्टर जैन आए, कहा चलो सीटी स्कैन अभी ही करना है। मैंने कहा ये क्या हो गया दो मिनट में सब। उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, डॉक्टर होने के नाते वो समझ रहे थे कि ये कुछ ठीक नहीं है, तो जल्दी जल्दी सीटी स्कैन करवाया। सीटी स्कैन करने के बाद डॉक्टर जैन ने मुझे बहुत सीरियस लुक से फेस पे था बुलाया, कहा कि देखो लंग्स में पानी है, उनको आईसीयू में एडमिट करना है। आईसीयू में एडमिट कर दिया और फिर वो बाईपैप लगाया हुआ था क्योंकि उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, फिर वो बाईपैप से उनको बहुत अनीज हो रही थी। तो एक दिन फिर मैं तो ऊपर नीचे आईसीयू में रहती थी, एक दिन मैं थोड़ा समय के लिए नीचे गई तो मुझे इमीडिएटली फोन आया जल्दी आइए। तो मैंने सोचा ये क्या हुआ, डॉक्टर खंडेलवाल ने फोन किया। तो फिर मैं गई तो सब डॉक्टर्स वहां खड़े थे और पापा बातें कर रहे थे, और फिर पापा ने कहा ठीक है आप लोगों को जो करना है वो करो, क्योंकि उनको उन्होंने फिर मुझे बताया कि हम लोग अभी सर को वेंटिलेटर पर डाल रहे हैं। तो यही बात हो रही थी कि वो कहां से वेंटिलेटर डाले, फिर पापा उनको कुछ और डायरेक्शन दे रहे थे कि मगर उनका विचार कुछ और था, तो उन्होंने कहा ठीक है आपको जो करना है, मीनिंग अलग प्रकार से ना, क्योंकि उनको पता था कि कभी हाँ कि आगे बाईपास भी होना है तो वो सेफ करके रखे करके एनीवे, तो वो जो भी करना था तो उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ आपका मीनिंग फैमिली का हाँ चाहिए ना। तो उस समय मैं भी क्या कहूं, तो फिर इतना ब्रीदिंग बढ़ गया तो मुझे कहा आप जाइए अभी हमको इमरजेंसी डालना ही है, तो वो डाल दिया। अभी भी मैं नहीं समझ पा रही थी इतना जल्दी क्या हो गया। फिर वो डालने के बाद मुझे बताया कि इतना पानी भर गया है लंग्स में, सो वी आर नो अल्टरनेटिव बट टू पुट हिम ऑन द वेंटिलेटर, और अभी आगे क्या होगा वो आप हमें नहीं पूछना क्योंकि हम भी कुछ नहीं बता सकते कि क्या होना है। तो ये सब हो गया और उन्होंने बता दिया ना कि अभी हम नहीं कुछ बता सकते क्या होना है। तो मैं वहां बाबा के रूम में गई बाबा के पास, और बाबा को उन दो तीन दिन ऐसे चला तो बाबा को एक ही बताया कि बाबा जो भी आप ठीक समझते हैं आपके बच्चे के लिए, भले इस जन्म में मेरे पिता है मगर है तो पहले बाबा के बच्चे ना, तो हमें उस समय थोड़ा डिटैच होना पड़ता है। अभी मैं समझू कि नहीं मेरे पिता है बाबा, आप कुछ भी करो उनको बचा लो, तो मैं समझती हूँ वो राइट थॉट नहीं था। तो मैंने बाबा को कहा बाबा पहले तो बाबा का बच्चा है ना, तो बाबा को ड्रामा में उनका जो भी पार्ट है आगे वो बाबा को एक्यूरेटली पता है, मुझे तो नहीं पता है ना। तो बस मैं बाबा को बैठ के याद कर रही थी, और फिर उस समय देखो दादियों की पालना इतनी है, मैं तो बिलीव नहीं कर सकती हूं अभी 10 साल पहले ही, मीनिंग दादियां फिर भी उनकी एज तो काफी अच्छी थी, दादी जानकी आई खास, जब भी ये सुना कि पापा वेंटिलेटर पर है उसी नेक्स्ट डे दादी आ गई और इतनी जाकर बाबा को पापा को मीठी दृष्टि दी। अभी उनको जब वेंटिलेटर पे डाला तो ऑब्वियसली वो सेडेटिव दे रखी थी तो उनकी तो आंखें बंद थी, तो दादी इतना प्यार से कहती है मेरे भाई, ऐसे ऐसे बच्चे को हिलाते ना, मेरे भाई आंखें खोलो देखो दादी आई है। फिर पापा आंख नहीं खोल रहे थे तो ऐसे हाथ डाल के ऐसे आंखें खोली और दृष्टि दे रही थी, इतना मीठा दृश्य मैं क्या बताऊं, इतना प्यार से। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग दादी आई और क्लास हॉस्पिटल में करवाया, मेरा भाई सुनेगा, मैं तो क्या कहूं दादियों की, क्या मैं महिमा करूं। और उस दिन तक जब दादी आई उस दिन ही जो एक्सरे निकाला था तो मैं अभी एक्सरे देखना भी सीख गई थी, तो वो पूरा व्हाइट, पूरा लंग्स जैसे पूरे बादल है ना ऐसे छाया हुआ था, और डॉक्टर्स ने कहा 7 दिन तो हमको कुछ नहीं पूछना, ये जल्दी कम नहीं होने वाला है, नहीं तो उनको लगते हैं ना कि सब फिर पीछे पड़ जाते हैं ये क्यों कम नहीं हो रहा है, तो मुझे ये डायरेक्शन देके रखे थे। तो फिर ये दादी आई, दादी ने दृष्टि दी, दादी ने मुरली सुनाई उस दिन, और फिर दादी गई, और उस दिन जो एक्सरे निकला उसमें ऑलरेडी क्लियर होने लगा था। तो देखो बाबा की कमाल, दादियों की पावर, कैसे चीजें वर्क करती हैं, ये तो मेडिकल से प्रूफ आ रही है कि कैसे वर्क कर रहे हैं। मगर उस समय बाबा ने, जो हम बात कर रहे थे, बाबा ने इतनी शक्ति दी मुझे और मम्मी को, दोनों को, कि जैसे हम थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं हुए। तो ये जैसे एक पेपर था, अभी कितना बड़ा छोटा वो तो मैं नहीं कह सकती, मगर नहीं, ये सिर्फ मार्कर है कि जब भी हमारे सामने पेपर आएगा तो बाबा है ही है वहां हमारे साथ। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू बाबा कि आपने कभी हाथ नहीं छोड़ा। तो वो मुझे उस सिचुएशन से बहुत अच्छा अनुभव हुआ। साक्षात्कार बाबा के अनुभव बहुत होते हैं, चित्र नहीं दिखाई पड़ता। मीनिंग अभी शिव बाबा का साक्षात्कार होता है वो तो हम योग में भी बाबा के पास जाते हैं। मगर ये निश्चय जरूर है कि हम ही है, हम ही वो विजयी देवता हैं और हम ही बन रहे हैं। तो वो चित्र बहुत क्लियर है मेरे सामने। ओम शांति।
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सोनल बहन जी, बहुत अच्छी तरह से आपने अपने संपूर्ण जीवन की यात्रा सुनाई और बाबा के साथ के भी अनुभव और अभी वर्तमान में हमें क्या करना है उसके विषय में बहुत अच्छी तरह से सुनाए। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।